नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कॉलोनी की होली, जिसे लिखा है चेतन स्वामी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें, कॉलोनी की होली। लगभग एक वर्ष के अध्यापन के बाद जब तय हो गया कि मुझे दिल्ली की कोचिंग में ही जमे रहना है, तो मैं पिताजी को भी यहीं ले आया। वे अकेले गांव में क्या करते। 2 वर्ष पूर्व माँ का देहावसान होने के बाद पिताजी अनमने से रहने लगे थे। निश्चय ही उन्हें अकेलापन कचोट रहा था। 73 वर्ष की वय में उन्हें अकेला छोड़ना पड़ा तथा वे अपने हाथों से खुद खाना बनाए, यह कतई उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। 2 माह पूर्व जब मैं पत्नी बच्चों को लाने गया तो उन्होंने 2 टूक मना कर दिया था। अविनाश, तुम बच्चों को अवश्य ले जाओ, पर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरी चिंता मत करो, मुझे खाना बनाने का अभ्यास है और अभी तो मैं स्वस्थ हूँ। तुम मेरी तनिक भी चिंता मत करना, यहाँ गांव के लोगों से मैं खूब हिला मिला हूँ, मेरा दिन आसानी से कट जाता है। वहाँ डिब्बे नुमा फ्लैट में मेरा दम घुट जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं अवश्य जैसा हो गया। क्या करता, मन महसूस कर घर के सारे आवश्यक राशन डलवा कर तथा एहतियात कुछ जरूरी दवाओं पर उनके रोग का नाम लिख छोड़ाया। हम पति पत्नी उन्हें छोड़ तो आए, मगर दोनों की आत्मा कचोटने लगी। ऐसे कैसे एक वृद्ध पिता को अकेले छोड़ आए। पत्नी रोज ही कहने लगी, उन्हें अकेला छोड़ना तो किसी प्रकार ठीक नहीं, यह तो सरासर निष्ठुरता है। हालांकि मैं दोनों समय स्वयं उनसे बात करता और दोनों बच्चों से भी बात करवाता। वे व्हाट्सएप कॉल में भरपूर प्रसन्न दिखने की चेष्टा भी करते। एक दिन पत्नी ने कड़ाई से कह दिया, भले ही बच्चों और मुझे गांव छोड़ाओ, बाबूजी को अकेला छोड़ना तनिक भी ठीक नहीं लग रहा मुझे, अन्यथा किसी तरह से मना कर उन्हें यहाँ ले आओ। मुझे भी यही ठीक लगा और मैं एक शनिवार को गाँव गया। किसी प्रकार उन्हें इस शर्त पर मना कर लाया कि दिल्ली में आप 15 दिन बिताएं, अगर मन नहीं लगे तो वापस गांव पहुंचा दूंगा। वे सहमत हो गए। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर हल्के की एक कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाता हूं। बंदा बहादुर मार्ग की एक कॉलोनी में मैंने 3 BHK फ्लैट ले रखा है। कॉलोनी के बाहर एक ठीक ठाक पार्क है। अब पिताजी का मन लगाने में इस पार्क की ही कोई भूमिका हो सकती थी। आते ही दिल्ली के सभी प्राचीन दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए मैंने लगातार 2 दिन उनके पैकेज टूर पर भेज दिया। उन्हें लाल किला बहुत अच्छा लगा। वापस आकर वे बताने लगे कि लाल किला कितना पुराना है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या क्या रहा है। जामा मस्जिद की विशालता भी उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि वे पुरानी दिल्ली में बल्ली मारान हल्के में मिर्जा गालिब की हवेली देखने भी गए। पिताजी ने किसी न किसी संदर्भ में मिर्जा साहब की शायरी का कोई न कोई टुकड़ा कह दिया करते थे और भी कई पुराने शायरों कवियों की रचनाओं में उनकी रुचि रही है। मेरे और पत्नी के लिए यह सुकून भरी बात थी कि वे दिल्ली में दिलचस्पी ले रहे थे। हम सोच रहे थे कि उन्हें घूमने फिरने का शौक रहा है तो ये भले ही घूमें। एक दिन कहने लगे, अविनाश, आज तो मैं भ्रम में पड़ गया। इस मुखर्जी नगर के निकट मैंने एक बोर्ड पर गोपालपुर गांव का नाम देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा देखें दिल्ली का गांव कैसा होता है। मैं तो गोपालपुर के पूरे इलाके में घूम आया, गांव तो मुझे वहां कहीं नज़र ही नहीं आया। हाँ, गोपालपुर में ना गोपाल है ना गौ, मछली बाजार जरूर था। मैं तो उल्टे पांव लौट आया। मैंने हंसकर कहा, पिताजी दिल्ली में गांव का क्या काम। हाँ, पूरे देश के गांवों से आकर बसने वाले लोगों ने दिल्ली के गांवों को गांव नहीं रहने दिया। गांव की चर्चा चलाकर मैं थोड़ा सक पका भी गया, कहीं इनके मन में अपने गांव की हुक तो नहीं जाग रही। मैंने पूछा, पिताजी अपनी कॉलोनी के सामने वाला पार्क आपको कैसा लगा। वे थोड़े से पार्क की छवि में जैसे खोए, फिर कहने लगे, पार्क तो ठीक है पर रख रखाव की कमी है। इधर मैंने थोड़ा काम किया है, उससे 1 पंथ 2 काज हो जाएगा। मुझे विस्मय हुआ, उसे शायद वे जान गए। कहने लगे, पेड़ों की सूखी डालियों के मैंने एक कोने में तथा सूखे पत्तों को एक अलग ढेर में जमा करना शुरू किया है। उनके इस श्रमदान से मैं थोड़ा झुंझलाया सा और कहा, पिताजी आपको पता नहीं, यह कार्य यहाँ कॉरपोरेशन का है। वे लोग 2-4 महीने में आते हैं और सफाई आदि के कार्य को निपटा जाते हैं। आप क्यों खामखा तकलीफ कर रहे हैं, आप तो केवल पार्क में घूमने जाया करो। वे मेरी बात से खिन्न नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक रचनात्मक चमक से आ गई। बोले, अविनाश तुम्हें पता है ना कुछ दिन बाद होली का त्यौहार है। मैंने पार्क में घूमने वाले लोगों से पता लगाया है कि यहाँ कॉलोनी में लोग होलिका दहन करते ही नहीं हैं। होलिका दहन टीवी में देखकर ही संतोष कर लेते हैं। इस बार पार्क में एक खाली कोने में होलिका दहन करने का निर्णय हम कुछ लोगों ने ले लिया है। ये सूखी डाली और पत्ते इस कार्य में बड़े काम आएंगे। मैं उनकी युक्ति पर मुस्कुरा कर रह गया। होली की शाम मैंने देखा उन्होंने कॉलोनी के लोगों को होली दहन का न्योता दिया और अपने जैसे कुछ प्रौढ़ों को भी बुला लिया। स्वयं ही पंडित बन गए, पूजा की और कुछ मंत्र पढ़े। आनंद तो तब आया जब होलिका दहन के समय कुछ युवकों को उन्होंने होली के बीच में खड़े प्रहलाद के प्रतीक थाम को निकालने के लिए प्रेरित किया। वे ललकार रहे थे, जवानों मर्यादा के प्रतीक प्रहलाद को जलने नहीं देना है। हिम्मत कर एक युवा जलती होली में से उस थाम को निकाल लाया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए पारंपरिक मनोविनोद किया। होली का थाम निकालने वाले का जल्दी विवाह हो जाता है, तुम्हारा भी होगा। वह युवक संकोच से भर गया और उपस्थित दूसरे किशोर तथा युवकों ने ताली बजाकर खुशी प्रकट की। मैंने देखा पिताजी यहाँ भी अपनी पहचान बना रहे हैं और अपना मन लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं फिर कल एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेहनत के रंग, जिसे लिखा है ऋतु खेतान ने। तो चलिए कहानी शुरू करें, मेहनत के रंग। मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई थी, कप कपाते शरीर को थोड़ी राहत मिली। हाँ, चैत्र का महीना जो आने वाला है, मतलब कि रंगों का त्योहार भी तो आने वाला है, जो कि सभी को बहुत पसंदीदा है। होली का नाम लेते ही मन में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। मस्ती का त्यौहार भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम किसी को भी रंग लगाकर पानी से भरे गुब्बारे फोड़कर मस्ती कर सकते हैं और फिर एक ही स्वर में सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। जैसे ही हम यह बोलते हैं सामने वाले को भी मुस्कुराना ही पड़ता है। हम पांच दोस्तों की मित्र मंडली हमारे मोहल्ले में मशहूर थी। होली के दो चार दिन पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते हैं। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरना, गुलाल के पैकेट बनाना और पक्के रंगों को छिपा कर रखते, बाजार से बड़ी वाली पिचकारी लाना, कुछ खाने का सामान भी जमा कर लेना, यह सब शामिल था हमारी होली की तैयारी में। हम पांच मित्र किसी एक के घर में यह तैयारी करते, उनके मम्मी पापा भी हमारी मदद करते, लेकिन इस बार होली के रंग कुछ अलग हो गए थे। शुभ ने सौरभ से कहा, सौरभ हाँ भाई, इस बार बंद कमरे में ही किताबों के साथ मनाएंगे। तभी देव बोला, अरे दोस्तों, इस बार हमारे लिए मेहनत के रंग लेकर आई है, होली खेलते तो एक बार ही हैं, कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी हर्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा तो सबसे पसंदीदा त्यौहार है होली, और वह अपने आंसू छिपाने लगा। कुशाख ने हर्ष को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भाई, इस बार हमको अपनी मेहनत का रंग दिखाना है, होली तो हर साल आती है लेकिन हमारी दसवीं की परीक्षा जीवन में एक ही बार तो आएगी। हाँ, अगर तू चाहे तो। तभी हर्ष ने कुशाग्र के मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं दोस्त, आगे नहीं बोलना, तुम सब सही कह रहे हो, इस बार होली पर हमको मेहनत का रंग ही दिखाना है। और पांचों ने हाथ से हाथ मिलाकर वादा किया कि वे खूब मेहनत करेंगे और रंगों के इस त्यौहार को खुशी से अपने घर में ही मनाएंगे। बच्चों का यह निर्णय सुनकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए थे, उनका साथ देने को भी वो तैयार थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, सभी के परिजन और बच्चे पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। शुभ की मम्मी तो रसोई में ऐसे काम करने लगी थी कि जरा सी आवाज़ भी शुभ की पढ़ाई में दखल ना दे। और देव की माँ ने तो अपने फ़ोन को ही साइलेंट मोड पर रख दिया था। वैसे ही और सबके घर में भी हुआ। हर्ष के पापा भी घर जल्दी आने लगे और सौरभ के पापा ने तो थोड़े दिन अपनी बाहर की यात्रा भी स्थगित कर दी। ऐसा व्यवहार जब बच्चों ने देखा और आपस में बात करने लगे, जब हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इतना त्याग किया है तो हमको भी तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। इस बीच होली का त्यौहार भी आ गया। सभी ने तिलक होली मनाई और विजय भव का आशीर्वाद दिया। आज परीक्षा का आखिरी दिन है। सभी बहुत उत्साहित थे, पहुंच गए परीक्षा हॉल में और पेपर पूरा कर झूमते हुए घर आ गए। देव की मम्मी ने सब दोस्तों को घर पर बुला लिया। शाम को 4 बजे सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना था। पार्टी गार्डन में ही थी, सभी लोग वहां पहुंचे। अचानक शुभ को पीठ पर जोर से लगा कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट गुलाबी हो चुकी थी। वह कुछ और सोचता उससे पहले ही रंग की बारिश होने लगी। सभी के लिए रंग बिरंगी पिचकारियों की व्यवस्था की गई थी। देव की माँ का यह सरप्राइज होली पार्टी का प्लान सबको बहुत ही पसंद आया। बच्चों की परीक्षा की थकान भी छूमंतर हो गई। रंगों से सरोबार होने के बाद सब ने पेट भर के खाना खाया। आज फिर से पांचों दोस्तों ने हाथ से हाथ मिलाया और जोर से बोले, इस बार की होली मेहनत के रंग वाली होली। अपने बच्चों को संतुष्ट चेहरे माता पिता भी पढ़ रहे थे और उनकी कड़ी मेहनत से वे खुश भी थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेहनत के रंग, जिसे लिखा है ऋतु खेतान ने। तो चलिए कहानी शुरू करें, मेहनत के रंग। मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई थी, कप कपाते शरीर को थोड़ी राहत मिली। हाँ, चैत्र का महीना जो आने वाला है, मतलब कि रंगों का त्यौहार भी तो आने वाला है, जो कि सभी को बहुत पसंदीदा है। होली का नाम लेते ही मन में कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। मस्ती का त्यौहार भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम किसी को भी रंग लगाकर पानी से भरे गुब्बारे फोड़कर मस्ती कर सकते हैं और फिर एक ही स्वर में सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। जैसे ही हम यह बोलते हैं, सामने वाले को भी मुस्कुराना ही पड़ता है। हम 5 दोस्तों की मित्र मंडली हमारे मोहल्ले में मशहूर थी। होली के 2-4 दिन पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते हैं। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरना, गुलाल के पैकेट बनाना और पक्के रंगों को छिपा कर रखते, बाजार से बड़ी वाली पिचकारी लाना, कुछ खाने का सामान भी जमा कर लेना, यह सब शामिल था हमारी होली की तैयारी में। हम 5 मित्र किसी एक के घर में यह तैयारी करते, उनके मम्मी पापा भी हमारी मदद करते, लेकिन इस बार होली के रंग कुछ अलग हो गए थे। शुभ ने सौरभ से कहा, सौरभ हाँ भाई, इस बार बंद कमरे में ही किताबों के साथ मनाएंगे। तभी देव बोला, अरे दोस्तों, इस बार हमारे लिए मेहनत के रंग लेकर आई है। होली खेलते तो एक बार ही हैं, कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी हर्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा तो सबसे पसंदीदा त्यौहार है होली, और वह अपने आंसू छिपाने लगा। कुशाख ने हर्ष को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भाई, इस बार हमको अपनी मेहनत का रंग दिखाना है। होली तो हर साल आती है, लेकिन हमारी 10वीं की परीक्षा जीवन में एक ही बार तो आएगी। हाँ, अगर तू चाहे तो। तभी हर्ष ने कुशाग्र के मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं दोस्त, आगे नहीं बोलना, तुम सब सही कह रहे हो, इस बार होली पर हमको मेहनत का रंग ही दिखाना है। और पांचों ने हाथ से हाथ मिलाकर वादा किया कि वे खूब मेहनत करेंगे और रंगों के इस त्यौहार को खुशी से अपने घर में ही मनाएंगे। बच्चों का यह निर्णय सुनकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए थे, उनका साथ देने को भी वो तैयार थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, सभी के परिजन और बच्चे पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे। शुभ की मम्मी तो रसोई में ऐसे काम करने लगी थी कि जरा सी आवाज़ भी शुभ की पढ़ाई में दखल ना दे। और देव की माँ ने तो अपने फ़ोन को ही साइलेंट मोड पर रख दिया था। वैसे ही और सबके घर में भी हुआ। हर्ष के पापा भी घर जल्दी आने लगे और सौरभ के पापा ने तो थोड़े दिन अपनी बाहर की यात्रा भी स्थगित कर दी। ऐसा व्यवहार जब बच्चों ने देखा और आपस में बात करने लगे, जब हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इतना त्याग किया है तो हमको भी तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। इस बीच होली का त्यौहार भी आ गया। सभी ने तिलक होली मनाई और विजय भव का आशीर्वाद दिया। आज परीक्षा का आखिरी दिन है। सभी बहुत उत्साहित थे। पहुंच गए परीक्षा हॉल में और पेपर पूरा कर झूमते हुए घर आ गए। देव की मम्मी ने सब दोस्तों को घर पर बुला लिया। शाम को 4 बजे सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना था। पार्टी गार्डन में ही थी। सभी लोग वहां पहुंचे। अचानक शुभ को पीठ पर जोर से लगा कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट गुलाबी हो चुकी थी। वह कुछ और सोचता उससे पहले ही रंग की बारिश होने लगी। सभी के लिए रंग बिरंगी पिचकारियों की व्यवस्था की गई थी। देव की माँ का यह सरप्राइज होली पार्टी का प्लान सबको बहुत ही पसंद आया। बच्चों की परीक्षा की थकान भी छूमंतर हो गई। रंगों से सरोबार होने के बाद सब ने पेट भर के खाना खाया। आज फिर से पांचों दोस्तों ने हाथ से हाथ मिलाया और जोर से बोले, इस बार की होली मेहनत के रंग वाली होली। अपने बच्चों को संतुष्ट चेहरे माता पिता भी पढ़ रहे थे और उनकी कड़ी मेहनत से वे खुश भी थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार दोस्तों।